आप सबका इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप सब जानते हैं कि कल इस्कॉन रोहिणी में दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक चलेगा वो। तो आप सबसे मेरा सविनय निवेदन है कि आप सब छुट्टी भी लेनी पड़े तो छुट्टी लो और इस बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ में भाग लो। देखो कि कैसे गुरु की शरण स्वीकार की जाती है, दीक्षा मिलती कैसे है, क्या प्रक्रिया है दीक्षा मिलने की। इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, आपके मन में भी लालसा जागेगी कि आप भी दीक्षा लें और एक गुरु के शरण में, गुरु के मार्गदर्शन में आप लोग भक्ति कर पाए। सो ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर दीक्षा लेना क्यों आवश्यक है। नहीं, काम चल ही रहा है, सो दीक्षा लेने से ऐसा क्या हो जाएगा, है ना। तो छोटे बच्चों को पीछे की ओर लेके बैठ जाएं प्लीज, सो उससे डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना। सो हम सब लोग महाभारत से परिचित हैं कि महाभारत में युद्ध के समय शुरुआत में अर्जुन बहुत ही विचलित हो गए थे और अर्जुन ने, आप सबको सुनाई दे रहा है ठीक से, अच्छा आपको पीछे सुनाई दे रहा है ठीक से, ठीक अच्छा। सो अर्जुन बहुत ही विचलित हो गए थे, दोनों तरफ जो हैं उनके अपने ही मित्र पिता समान व्यक्ति गुरु सब बंधु बांधवी थे। तो वो सोच रहे थे इतनी कठिन परिस्थिति में से मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा। सो उस समय उनके सबसे पास कौन खड़े थे, भगवान कृष्ण खड़े थे, है ना। सो क्योंकि वो भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, हे सखा हे ममेत्र, कि वो कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, तो उन्होंने, अर्जुन ने कृष्ण से एक मित्र की भांति वार्तालाप शुरू किया। तो काफ़ी उन्होंने भगवान कृष्ण को तर्क वितर्क किए, लेकिन आप भगवद गीता के प्रथम अध्याय के आखिर में आप देखेंगे कि अर्जुन ने बोला कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे तर्क देने के बावजूद कि ऐसा करना चाहिए, मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, तो भगवान ने कहा तुम भिक्षा मांग के गुजारा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर युद्ध नहीं भी करोगे तो युद्ध तो होगा, और जब तुम्हें पता चलेगा कि युधिष्ठिर घायल हो गया है, हाँ, नकुल सहदेव पे भीषण प्रहार हो रहे हैं, तो क्या तुम रुक पाओगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा लड़ाई में, नहीं। सो हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं, कभी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो अपने घर वालों की सपोर्ट में हमें नहीं भी, अगर हम चाहते तो भी खड़ा होना ही पड़ता है, नहीं है ना। इसी तरह से लड़ाई बढ़ जाती है, दो व्यक्ति लड़ते हैं, फिर वो 2 के 10 हो जाते हैं, फिर वो 100 हो जाते हैं, फिर दंगा हो जाता है, हाँ। सो भगवान ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम लड़ाई से बच नहीं पाओगे। तो अर्जुन ने कहा अभी भी तो मैं लड़ने के लिए यहाँ खड़ा हूं, तब देखूंगा अगर लड़ने की आवश्यकता हुई तो उसमें क्या फर्क है। सो भगवान ने कहा देखो उस समय अगर तुम लड़ोगे तो तुम अपनी इच्छा से लड़ोगे, अपने मन से लड़ोगे, अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ोगे, लेकिन अभी अगर तुम लड़ोगे तो मेरे कहने से लड़ोगे। दोनों में फर्क है। सो भगवान ने कहा अगर तुम अभी युद्ध लड़ते हो तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो युद्ध खत्म हो चुका है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं सबको मार चुका हूं पहले से। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, सव्यसाचिन मतलब अर्जुन, अर्जुन का एक नाम सव्यसाचिन है। वो बाएं हाथ से भी उतनी दक्षता से तीर चला सकते थे जितने दाएं हाथ से। आमतौर पे हम देखते हैं किसी का दाएं हाथ चलता है किसी का बाएं हाथ चलता है, लेकिन अर्जुन दोनों हाथों से बराबर तीर चला सकते थे, है ना। सो भगवान कृष्ण ने कहा हे सव्यसाचिन, हे अर्जुन, तुम निमित्त बन जाओ, मार मैं चुका हूं सबको लेकिन यश तुम ले लो, है ना, और मेरे कहे अनुसार कार्य करो। तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानी और युद्ध में विजयी हुए और बहुत सारा यश उन्होंने प्राप्त किया। पूरे सारे पांचों पांडवों ने यश प्राप्त किया। सो ऐसा नहीं है कि अर्जुन बहुत दुविधा में था, हम लोग दुविधा में नहीं है या हम लोग दुविधा में नहीं पड़ेंगे। हम सब लोग आज भी दुविधा में हैं, है ना, और आगे जाकर भी हमें दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये अर्जुन तब तक भगवान कृष्ण की उसने शरण नहीं ली जब तक उसने ये मान नहीं लिया कि मैं बहुत दुखी हूं। सो भगवद गीता के पहले अध्याय के 46वां जो आखिरी श्लोक है पहले अध्याय का, उसमें अर्जुन बोल रहा है शोक संविघ्न मानसा, कि मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जीने की भी इच्छा खत्म हो चुकी है। सो ये अर्जुन के जीवन में एक जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा क्षण था जहां पर कि उसका जीवन बदल गया, क्योंकि अर्जुन ने ये स्वीकार कर लिया कि वो परेशान है। आप में से कितने लोग तैयार हैं ये स्वीकार करने के लिए कि आप परेशान हैं? जब तक ठीक है, जब तक हम ये स्वीकार नहीं कर लेंगे, ये समझ नहीं लेंगे कि हम बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हैं, बार बार हमें भौतिक परिस्थितियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तब तक हम इससे बाहर निकलने का उपाय नहीं खोजेंगे। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ली और अपने जो उनको मानसिक संताप था, जो उनका मन बहुत ही उद्विग्न था, बहुत परेशान था, उसका हल ढूंढ लिया उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण लेकर, भगवान कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करके। उसी प्रकार हम सब भी अगर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें, एक गुरु की शरण अगर हम स्वीकार करें, तो हम इस भौतिक जो स्थिति है, जो भौतिक अस्तित्व है हमारा, उसको हम अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं और ये शरीर छोड़ने के बाद हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं नारद मुनि के जीवन से। जो नारद मुनि हैं वो एक दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, है ना, पता है आप लोगों को। सो एक दासी के पुत्र थे, उनकी जो माता है वो जूठे बर्तन धोया करती थी। हाँ, और पिता का देहांत हो चुका था। सो जिस घर में नारद मुनि की माँ जो है साफ सफाई का काम करती थी, वहाँ पर चतुर्मास के समय कुछ भक्त आके ठहरे वहाँ पर, जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है ना। सो अभी ये चतुर्मास का तीसरा महीना चल रहा है ना। सो चतुर्मास के दौरान बारिश वगैरह होती है, भगवान विश्राम करते हैं इस दौरान। सो जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, वो ज़्यादा इधर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, क्योंकि पहले तीर्थयात्रा पैदल चल के होती थी, बैलगाड़ी इत्यादि में होती थी। तो क्योंकि चारों तरफ बारिश वगैरह रहती थी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मुश्किल हो जाता था। तो वैष्णव जो भक्त जहाँ पर होते थे इन चार महीनों में, वहीं पर रुक जाते थे, है ना। अगला महीना अब कार्तिक का आएगा, जो चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। तो इन चार महीनों के दौरान जो है वैष्णव बहुत सारी तपस्याएं करते हैं और भगवान के बारे में और अधिक समय निकालते हैं कि भगवान का चिंतन कर सकें, भगवान के दिव्य नामों का जप कर सकें। सो कुछ वैष्णव उस परिवार में, उस घर में आकर ठहरे थे जहाँ नारद मुनि की जो माता है वो नौकरानी का काम कर रही थी। सो नारद मुनि और उनकी माता को अवसर मिला कि वो उन वैष्णवों की सेवा कर सकें। तो उनकी सेवा की नारद मुनि ने, और सेवा करते समय नारद मुनि ने उन वैष्णवों से, उन भक्तों से भगवत का, भगवत शिक्षा प्राप्त की। और भगवत शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो वैष्णव चले गए वहाँ से, तो नारद मुनि भी जो है वो भगवान का साक्षात करने के लिए घर छोड़ के चले गए जंगलों में। और भगवान ने उनको दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे तो आप बहुत ही प्रसिद्ध भक्त बनोगे और अगले जन्म में आप स्वेच्छा से मेरे दर्शन करने का अधिकार प्राप्त करोगे। तो हम देखते हैं कि ये शरीर छोड़ने के बाद नारद मुनि अगले जन्म में उन्होंने नारद मुनि का जन्म लिया और वो स्वेच्छा से जब भी चाहते हैं भगवान का दर्शन कर पाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में वो स्वेच्छा से भ्रमण कर सकते हैं, है ना। सो ये एक गुरु की शरण लेने का परिणाम है। एक गुरु की शरण लेंगे तो हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होगा, आप सबका आध्यात्मिक स्वरूप है। आप में से हर एक व्यक्ति शरीर की ओर मत जाइए, जो आप हैं, जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है वो। सो आप सब दिव्य हो, आध्यात्मिक हो, लेकिन समस्या क्या है कि हम अभी इसे भूल चुके हैं और भूले हुए भी हमें करोड़ों अरबों साल हो चुके हैं, इसलिए बार बार बताने पर भी हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन हैं, है ना। जैसे एक शीशा है, अगर वो शीशा कई वर्षों तक, 50 वर्षों तक अगर उपयोग में नहीं आया तो उस पर धूल की परत जम जाती है, नहीं। तो आप वो शीशा मिल जाए तो क्या आप उसमें अपनी शक्ल देख सकते हो? उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकते, है ना। सो लेकिन जब हम, और क्या एक फूंक मार के वो शीशा साफ हो जाएगा? इतना जम गई होगी उसके ऊपर धूल कि उसको अच्छे से धोना पड़ेगा, बार बार साफ करना पड़ेगा कपड़े से, विम लगाकर, सर्फ लगाकर। फिर आप जब वो शीशा साफ हो जाएगा तो आप अपनी शक्ल देख पाओगे। इसको बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जन। तो हमारा जो मन है वो भी एक शीशे की तरह ही है। तो 50 साल में एक शीशा इतना खराब हो सकता है, तो हमारा मन जिसपे करोड़ों वर्ष की मैल जमी हुई है, वो इतनी आसानी से कैसे साफ होगी, कैसे हो पाएगा। शास्त्रों में कहा गया है जन्मना जायते शूद्रा, हर व्यक्ति जो है वो जन्म से शूद्र है। पहले के जमाने में जो है गर्भाधान संस्कार हुआ करते थे, जो है बच्चे की संतान उत्पत्ति के लिए जो है स्त्री और पुरुष आपस में मिलते थे, पति पत्नी। लेकिन आजकल ये शिक्षा करीब करीब लुप्त हो चुकी है। लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपना जो है सुख प्राप्ति के लिए, संतान उत्पत्ति की कोई उसमें बात नहीं है। लोग जिस स्त्री पुरुष जो है वो स्वच्छंद व्यवहार कर रहे हैं। सो ऐसे वातावरण में जो संतान पैदा हो रही है उनको भी कुछ आध्यात्मिक सुकृति नहीं है, क्योंकि माँ बाप के पास आध्यात्मिक सुकृति नहीं है। तो जिस प्रकार एक पशु पैदा होते ही खाने पीने की तलाश में लग जाता है, उसी प्रकार माँ बाप भी खाने पीने, आहार निद्रा भय मैथुन चा, वो भी खाने पीने रक्षा करने और मैथुन की तलाश में लगे रहते हैं, और आगे बच्चे भी उसी काम में लग जाते हैं। और माँ बाप पूरी ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को कि वो इन चार कार्यों में बहुत ज़्यादा दक्ष हो जाए, बहुत ज़्यादा कुशल हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा कुशल हो तो लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना पैसा कमा लिया इसने। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो पैसा साथ नहीं जा सकता, सब इधर ही रह जाएगा। नहीं, धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद कितने पैसे साथ ले गया, वो कुछ भी साथ नहीं लेके गया। उसके आगे जो बच्चे हैं वो भी सब यहीं छोड़ के जाएंगे। हमारे जो पूर्वज हैं वो भी सब कुछ यहीं छोड़ के चले गए थे, और हम भी भरसक प्रयास करने पर साथ में कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो जो हम साथ में नहीं लेके जा सकते वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम साथ में क्या लेके जा सकते हैं, और जो हम साथ में लेके जा सकते हैं क्या हम उसको कमाने की चेष्टा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र हैं। शूद्र व्यक्ति वो होता है, शूद्र व्यक्ति ऐसा नहीं है कि शूद्र परिवार में जन्म लिया तो शूद्र हो गया। शूद्र व्यक्ति जो है वो मन से शूद्र है, गुणों के आधार पर शूद्र है। जिसको जीवन की लक्ष्य के बारे में नहीं पता वो शूद्र है, जिसको पता है वो ब्राह्मण है, बात खत्म। और तीसरा वर्ग नहीं है। तो ये सोचना कि कोई शूद्र परिवार में जन्म लेने से शूद्र है, या क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने से क्षत्रिय है, या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण है, तो ऐसा नहीं है। और भगवान कृष्ण इसकी पुष्टि भगवद गीता में कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्णया मया सृष्टम, मैंने बनाए हैं चार तरह के वर्ण। चार तरह के वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो भगवान ने कहा कि मैंने निर्माण किया है इन चारों तरह के वर्णों का। तो अर्जुन ने पूछा कि किस आधार पे आपने ये चार जो है वर्ण बनाए हैं, क्या जाति के आधार पे बनाए हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, चतुर्वर्णया मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, उनके गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए हैं, है ना। तो जिसमें जिस प्रकार के भी गुण है उस गुणों के आधार पर उसका जो है सम्मान किया जाएगा, उसको पहचाना जाएगा। अगर हम बीमार हो जाएं और हमें पता चले कि अपोलो हॉस्पिटल में बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, तो क्या हम उसकी कास्ट पूछते हैं? अच्छा कौन सी जाति का है? हम कास्ट नहीं पूछते। उसको अपने जो वो इलाज करना जानता है कि नहीं जानता, क्या वो मेरी बीमारी ठीक कर देगा या नहीं कर देगा, हम सिर्फ यही देखते हैं, उसकी जाति नहीं देखते, है ना। जो जज बैठा है न्यायालय में, क्या हम उसकी जाति देखते हैं? वो किसी भी जाति का है, अगर उसको न्याय करने का उसके पास गुण है तो वो कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है। तो जब हम एक डॉक्टर की, एक जज की, हम जाते ही नहीं देखकर उनके गुणों के आधार पर हम उनसे सलाह लेते हैं। हाँ, तो वो या कोई वकील है, आप किसी वकील के पास सिर्फ इसलिए थोड़ा ना जाओगे कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। अगर कोई वकील है और शूद्र परिवार में भी जन्म लिया लेकिन उसका बहुत तेज दिमाग चलता है, कानून की उसको जानकारी है, अगर आपको कोई समस्या आ गई कानूनी, तो क्या आप उसके पास नहीं जाओगे कि वो शूद्र परिवार में जन्म लिया उसने? हम उसके पास जाएंगे और उसकी मदद लेंगे, नहीं, क्योंकि उसको अपने काम के बारे में अच्छे से जानकारी है। सो भगवान कह रहे हैं कि मैंने गुणों के आधार पर वर्णों की स्थापना की है, जाति के आधार पर वर्णों की स्थापना नहीं की है, गुण कर्म विभागशा। लेकिन जब कलयुग का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, तो जैसे हमने अभी बात किया कि सभी लोग जीवन के लक्ष्य के प्रति उदासीन हो गए, भूल गए, और सिर्फ यही समझना शुरू कर दिया कि किसी प्रकार से अगर हम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर पाए, उनका पेट भर पाए, उनका अच्छी उनको शिक्षा दिला पाए, तो यही जीवन का लक्ष्य है ना। जैसे अमेरिका में बोलते हैं, एक सफल व्यक्ति कौन है? जिसके पास में एक सुंदर पत्नी है, दो बच्चे हैं और एक कुत्ता है। जिसके पास ये वस्तुएं हैं वो व्यक्ति सफल है, वो एक अच्छा ईसाई है, बाकी सब बेकार हैं। तो क्योंकि हम भी पाश्चात्य देश के पीछे भाग रहे हैं, हम भी उनकी नकल कर रहे हैं लगातार, तो हम भी यही सोच रहे हैं कि जिसके पास अच्छा मकान, गाड़ी, हाँ, स्त्री बच्चे हैं, धन है उसके पास, तो वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। हाँ, और हमें भी उसकी नकल करनी चाहिए। जबकि हमें ये सोचने का प्रयास करना चाहिए कि वो जितने भी उसके अंदर गुण हैं, क्या वो गुण उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते हैं? अगर नहीं दिला सकते हैं तो वो गुण बेकार है। सो अगर हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है आज के जमाने में, तो फिर क्या आशा है, कैसे हम इस शूद्रता से छुटकारा पा सकते हैं? तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि यथा कांचन ताम याति कांस्यम रस विधानता, कि जैसे जो कांसा होता है, जो कांसा पता है आप सबको, माताओं को पता होगा, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको, पहले कांसे के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते थे, है ना, ये घंटियां वगैरह कांसे से बनती हैं, नहीं? तो पहले ये विद्या प्राप्त थी कि कांसे जो है, कांसे में अगर पारा मिलाया जाए और एक विशेष विधि का अगर पालन किया जाए तो कांसा सोने में बदल जाता था। कांचन, कांचन मतलब सोना। सो पहले ये विधि उपलब्ध थी, अभी उपलब्ध नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार कांसे में पारा मिलाने से उसको सोना बनाया जा सकता है, यथा कांचन ताम याति, याति मतलब बन जाता है, कांचन ताम मतलब सोना, यथा कांचन ताम याति कामस्यम रस विधानता, रस की प्रक्रिया, रस अर्थात पारे की प्रक्रिया द्वारा जिस प्रकार कांसे को सोने में बदला जा सकता है, तथा दीक्षा विधानेन, उसी प्रकार दीक्षा के माध्यम से द्विजत्वम जायते नृणाम, जो मनुष्य है, नृणाम जो मनुष्य है, जायते बन सकते हैं, हाँ, द्विजत्वम द्विज ब्राह्मण बन सकते हैं। सो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी जाति में, किसी विशेष जाति में आपका जन्म हुआ, वो कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप द्विज, क्या आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं? अगर आप ब्राह्मण पढ़ना चाहते हैं तो दीक्षा लीजिए। तो दीक्षा लेने से क्या होगा? क्या हमारे चार हाथ उग जाएंगे क्या? तो क्या होगा दीक्षा लेने से? तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कि दीक्षा के समय जो शिष्य होता है वो अपने गुरु को आत्मसमर्पण करता है, अपने गुरु को बोलता है कि हे गुरुदेव, आप प्लीज जिस प्रकार आप चाहें आप मेरा प्रयोग कीजिए, आप मुझे अपने हिसाब से चलाइए। अभी तक मैं अपने हिसाब से चल रहा था, मुझे सुख की तलाश में बहुत भटक लिया मैं, ब्रह्मांड भ्रमते कौनो भाग्यवान जीव, बहुत भटक लिया मैं, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन भाग्यवान बन गया अभी मैं। अभी मेरा सौभाग्य है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, मुझे बहुत ही मैं भाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे गुरु की शरण मिली है ना। सो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा के समय जो शिष्य है वो गुरु के प्रति पूरी तरह से अपना समर्पण प्रदर्शित करता है और तन मन धन से गुरु की सेवा के लिए जो है तत्पर हो जाता है वो। और तो ये तो शिष्य की, शिष्य ने किया, शिष्य का कर्तव्य था, तो गुरु ने क्या किया? हाँ, तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले और उसी समय, ऐसा नहीं है कि बाद में, उसी समय गुरु करे तार आत्मसम, जो गुरु है उसको अपने समान ही शुद्ध बना लेते हैं, उनके जितने भी पाप हैं वो गुरु हर लेते हैं और अपने शिष्य को बोलते हैं कि अभी आप पाप मुक्त हो चुके हो। हाँ, लेकिन एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है, और शर्त क्या है कि आप दोबारा से पाप मत कीजिए, है ना। गुरु की शरण ली, पाप मुक्त हो गए और फिर से पाप में जाके लग गए, तो उसी प्रकार है जैसे हाथी नदी में जाके बहुत अच्छे से स्नान किया और बाहर निकल के अपने आप को सुखाने के लिए अपने ऊपर धूल डाल ली, हस्ती स्नान। हाँ, सो पाप मुक्त हो गए लेकिन दोबारा अपने ऊपर धूल डाल के वापिस गंदे हो गए, तो स्नान करने का क्या लाभ? अगर गुरु की शरण ली तो शरण लेकर पाप मुक्त हो गए, लेकिन अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया और पाप कर्म में लगे रहे तो दीक्षा भी इतना फल नहीं देती है। तो हमें उदाहरण मिलता है, एक दो बहुत ही उच्च कुल में जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे दो व्यक्ति, हाँ, और उनका नाम था जगाई और मधाई। हाँ, आप में से कितने लोग जानते हैं जगाई और मधाई को? एक दो छः, तो बंगाल के हैं तो आपको जानते होंगे, तीन चार बस। हाँ, आप भी जानते हो कौन है, कौन है जगाई मधाई? हाँ, अच्छा, तो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे दो ये व्यक्ति जगाई और मधाई, लेकिन बुरी संगत में पड़ गए। हाँ, बुरी संगत में पड़ने के कारण क्या हुआ, उनमें सभी प्रकार की बुरी आदतें आ गई, शराब पीना, मांस खाना, हाँ, और लूटपाट करना, जुआ खेलना, गाली गलौज करना, मारना पीटना लोगों को, और इतनी बुरी आदतें थी उनके अंदर कि कहा जाता है कि जो चित्रगुप्त हैं, चित्रगुप्त कितने लोग जानते हैं? ओ अच्छा, कौन है चित्रगुप्त? हाँ, चित्रगुप्त मौर्य, अच्छा, हाँ, यमराज का अकाउंटेंट जो है, जो यमराज के अकाउंटेंट है, जो आपके पाप और पुण्य का लेखा रखते हैं, नहीं जानते हो? अभी बताओ कितने लोग जानते हो चित्रगुप्त को? ठाकुर गुरु आप नहीं जानते चित्रगुप्त? आपको पता है, आप सबके जो दायां और बायां कंधा है इस पे दोनों पे एक एक बंदा बैठा हुआ है, चित्रगुप्त का प्रतिनिधि है वो। हाँ, तो आप अच्छा कर्म करते हो तो दायां कंधे वाला लिख लेता है, खराब कर्म करते हो तो बायां कंधे वाला लिख लेता है, आपके कंधे पे सवार है, दिखे आप, आपने वो दिखते तो आप सुधर जाते और नहीं दिख रहे तो आप मनमर्जी कर रहे हो, नहीं। सो ऐसा कहा जाता है कि जो चित्रगुप्त है वो ओवर टाइम काम कर रहे थे, जगाई मधाई के पापों का रिकॉर्ड रखने के लिए। इतने पाप कर रहे थे कि 9 से 6 के बीच में लिख नहीं पा रहे थे, वो रात को भी लिखते रहते थे जगाई मधाई, इतने पाप करते थे। सो एक बार चैतन्य महाप्रभु के आदेश से, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, वो स्वयं कृष्ण जो है भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और बलराम जी जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, यहाँ पर प्रकट होते हैं। हाँ, शची नंदन से ही क्या है, क्या था कि जो ब्रजेंद्र नंदन जय, हाँ ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत हैलस है, कि जो ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण है, वही कलयुग में शची नंदन अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। बलराम हैला निताई, और जो बलराम जी हैं क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी जो है वो उनको भगवान कृष्ण का जो संग छोड़ नहीं सकते हैं, तो कलयुग में जैसे ही उनको पता चला कि भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं तो वो भी तुरंत नित्यानंद प्रभु के रूप में वहां पर प्रकट हो गए कलयुग में, और उनका नाम हुआ नित्यानंद प्रभु। सो ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत हैला सई, बलराम हैला निताय, दीनहीन जत छिल, कि जितने भी दीनहीन पापी थे, हाँ दीनहीन जत छिल हरि नामे उधारे, और उनको उन्होंने क्या किया, हरि नाम दिया उनको, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का परामर्श दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दीनहीन जत छिल हरि नामे उधारिल, हरि नाम देके उनका उद्धार किया, तो कौन इसकी गवाही देगा, कैसे पता चलेगा कि उन्होंने किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं तार साखी जगाई माधाई, इसकी जो गवाही जो है वो जगाई मधाई नामक दो व्यक्ति देंगे। तो हम उन्हीं जगाई मधाई की हम चर्चा कर रहे हैं। सो ये जगाई मधाई जो है बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे। हाँ, सो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद प्रभु जाकर जगह जगह प्रचार कर रहे थे, लोगों को हरिनाम लेने के लिए बोल रहे थे, और कह रहे थे आमा रे किनिया लो बोलो गौर हरि, किनिया का मतलब है खरीद लो, है ना, आमा रे किनिया लो बोलो गौर हरि, कि आप मुझे खरीद सकते हो, बलराम जी बोल रहे हैं कि मैं आपका सेवक बनने के लिए तैयार हूँ, तो क्या कीमत है सेवक आपको बनाने के लिए, कि आप सिर्फ बोलो गौर हरि की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। सो आप इतना बोलेंगे तो बलराम जी जो है आपकी सेवा में तत्पर हो जाएंगे, इससे बड़ी और क्या बात है। सो नित्यानंद प्रभु सभी को बोल रहे थे कि प्लीज आप सब मिलकर भगवान कृष्ण के नामों का जप करो, चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार बोलो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनको सामने से जगाई और मधाई आते हुए दिखाई दिए, तो जब जगाई मधाई आ रहे थे सो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि इनको भी भक्त बनाना चाहिए। सो नित्यानंद प्रभु उनके पास गए और उनको बोला कि आप जो है प्लीज़ आप मिलकर भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप करो। तो जगाई मधाई को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उठाकर पास ही पड़ा हुआ एक मटका नित्यानंद प्रभु के सिर पर जोर से मारा। सो नित्यानंद प्रभु घायल होकर वहाँ पर गिर पड़े और उनके सिर से खून की धारा बहनी शुरू हो गई, और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ऐसी दुर्घटना हुई है तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर लिया। और जैसे ही वो जगाए मधाई को मारने वाले थे तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनको बोला कि हे महाप्रभु, आप द्वापर युग में आपने लोगों का, असुरों का संहार किया, लेकिन कलयुग में आप लोगों को मारने के लिए अवतरित नहीं हुए हैं। कलयुग में अगर आप असुरों का नाश करने का जो है बीड़ा उठाएंगे तो पूरा संसार खाली हो जाएगा, क्योंकि सारे ही असुर हैं, सारे ही भगवान के विमुख हैं। जो भी भगवान के विमुख है वो असुर है, जो भगवान का भक्त है वो सुर अर्थात देवता है। तो उन्होंने कहा, नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की कि प्लीज आप शांत हो जाइए, आप पतित पावन है, आप प्लीज कृपा करके आप जो है जगाई और मधाई का उद्धार कीजिए। और जगाई मधाई भी बहुत घबरा गए थे और उन्होंने नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण स्वीकार की और चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उनका उद्धार किया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों का आलिंगन किया तो इनमें पाप थे जगाई और मधाई के, सारे पाप चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिए, ग्रहण कर लिए। तो इनमें ज़्यादा पाप थे कि चैतन्य महाप्रभु जो कि गौर वर्ण के हैं, पिघले हुए सोने जैसा चैतन्य महाप्रभु का रंग है, हाँ, और जगाई मधाई के जब पाप उन्होंने ग्रहण किए तो उनका रंग जो है भगवान कृष्ण के रंग जैसा हो गया, एकदम श्याम रंग के हो गए। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, सबने बोला कि ऐसा कैसे हो गया, आप वापस गौर वर्ण के कैसे होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला, घबराने की बात नहीं है, आप सब मिलकर जोर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे भक्तों ने मिलकर जोर से बहुत ही उत्साहपूर्वक भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन आरम्भ किया और जैसे जैसे भगवान का कीर्तन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे चैतन्य महाप्रभु का जो रंग है वापस गौर वर्ण का हो गया। सो चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई को कहा, देखो नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैंने तुम्हें पाप मुक्त तो कर दिया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल हो तो दोबारा पाप मत करना। सो जो नित्यानंद प्रभु हैं वो आदि गुरु हैं, हाँ, तो जो गुरु हैं वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। सो अगर हम लोग भी गुरु की शरण लेंगे तो गुरु के प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे सारे पापों को हर लेंगे और हमें भी हमारे गुरु की तरह शुद्ध बना देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ यही रहेगी कि दोबारा से पाप नहीं करें। सो अगर हम चार तरह के जो पाप हैं कि मांस मछली अंडा प्याज इत्यादि नहीं खाना, नशा मतलब शराब बीड़ी सिगरेट पान, हाँ, चाय कॉफ़ी इत्यादि नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्रियां पर पुरुष गमन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अगर हम ये चार जो पाप हैं इससे बच कर रहेंगे, जो भी हम खाएंगे भगवान को भोग लगा कर खाएंगे और प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करेंगे तो हम भी दीक्षा लेने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। सो अगर आप सब लोग भी ये कार्य करते हैं, नियमित रूप से रोज 16 माला का अगर आप लोग जप करते हैं, हाँ, और चार नियम का पालन करते हैं तो एक साल अगर आप लगातार पूरे निश्चय से आप ये कर पाए तो आपका नाम भी दीक्षा के लिए दिया जा सकता है ना। सो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब कल अवश्य, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं तो भी काम को छोड़ के आप आए और देखें किस प्रकार गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं, किस प्रकार गुरु शिष्य को आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं। सो ये सब बहुत अद्भुत है, आप लोगों ने कभी भी पहले ऐसे नहीं देखा होगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। तो आप सब आए देखें और प्रेरणा लें और रोज़ भगवान के दिव्य नामों का कम से कम 16 माला का जप करें, ताकि आप भी गुरु की शरण स्वीकार करके द्विजत्वम जायते नराम, आप भी ब्राह्मण के गुण अर्जित करें, आप भी ये शरीर छोड़ने से पहले ये अच्छी तरह से समझ लें कि भगवान से हमारा क्या संबंध है और इस संबंध को पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है। अगर हम ये कर पाए ये शरीर छोड़ने से पहले, तो ये कहा जाएगा कि हमारा जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने का जो लक्ष्य था वो सफल हुआ, हमारा मनुष्य जीवन प्राप्त करना सफल हुआ और हम दोबारा अब इस भौतिक संसार में जो दुखालय और अशाश्वतम है, दुखों से भरा हुआ है और नश्वर है, उससे हम सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है कि चतुर्मास में जो हम तरह तरह की चीज़ें खाने से परहेज करते हैं, तो ऐसा क्यों है? जैसे जो पहला महीना है उसमें हम लोग पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते, जो दूसरा महीना है उसमें हम दही नहीं खाते, जो तीसरा महीना जो अभी कल परसों से शुरू हुआ है उसमें हम दूध नहीं लेते, और जो चौथा महीना है उसमें हम उड़द की दाल नहीं खाते, तो ऐसा क्यों है, हम ये परहेज क्यों करते हैं? सो वास्तव में चतुर्मास के दौरान हमें बहुत सारे तपस्याओं का पालन करना चाहिए। हमारे बहुत से आचार्य, बहुत से संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत कठिन तपस्याएं की हैं। अगर हम उनके बारे में सुन लें तो हम सोचें तो बहुत कठिन है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमारी कमजोर स्थिति को, असहाय अवस्था को देखकर इसको बहुत ही सरल बना दिया, और उन्होंने बोला देखो आप पूरी तरह से भोग को नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन आप कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों से परहेज करो, इससे आपका जो संकल्प शक्ति है धीरे धीरे और आपकी सुदृढ़ होगी, आप ज़्यादा अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर पाओगे। और विशेष रूप से जैसे पहले माह में हम लोग पत्तेदार जो सब्जियां नहीं खाते, तो वो सेहत की दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि वो पत्तेदार सब्जियां जो हैं बारिश के दिनों में कीड़ों से भरी होती हैं। सो अगर हम नहीं खाएंगे तो हम देखेंगे कि सेहत के लिहाज से भी अच्छा है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें, है ना? अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो हमारा जो मन है वो ज़्यादा भटकेगा नहीं। जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है उसका मन दशों दिशाओं में भागता है फुल स्पीड से, है ना? आप सबको इसका व्यक्तिगत अनुभव भी होगा, है कि नहीं है? है? अच्छा। सो अगर हम अपने इंद्रियों पर संयम रखेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा, और जब हमारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं तो हम भगवान के दिव्य नामों का अच्छे से जप कर पाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि पहले महीने में हम पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएं, दूसरे में दही, तीसरे में दूध और चौथे में उड़द दाल। उड़द दाल हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि उड़द दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उड़द दाल में इतना प्रोटीन होता है जितना मछली में होता है, तो उड़द दाल खाना मांस खाने के बराबर समझा जाता है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप उड़द दाल खाना ही छोड़ दो तो आप यहाँ आना छोड़ दोगे। सो इसीलिए हमारे आचार्य ने बोला कि ठीक है, आप हमेशा तो नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन कम से कम 30 दिन के लिए आप उड़द दाल मत खाइए, है ना? तो उड़द दाल अगर हम नहीं खाएंगे तो जो हमारे शरीर को जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रोटीन मिलता है, अगर हमारी इंद्रियां बहुत ज़्यादा अगर बलवान होंगी तो वो इंद्रिय भोग के लिए हमारे मन को और ज़्यादा सताएंगे। इसी कारण से हम प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाते क्योंकि इससे हमारा मन विचलित होता है। सो अगर हम उड़द की दाल इत्यादि जो बहुत ही रिच खाना होता है जिससे कि हमारी इंद्रियां बलवान होंगी, हमारा मन विचलित होगा। अगर हम उनको छोड़कर अगर हम सादा भोजन खाएंगे और सादगी से रहेंगे तो हम देखेंगे कि हम ज़्यादा स्वस्थ भी रह पाएंगे, अच्छे से हम भक्ति भी कर पाएंगे। तो चतुर्मास ये अवसर है जिसमें हम कुछ कुछ समय के लिए हम जो इस तरह के जो पदार्थ हैं इनको हम छोड़ते हैं ताकि हम अपने इंद्रियों पे अच्छे से नियंत्रण कर पाए। ठीक है, तो प्रश्न है कि हर कार्य में ब्राह्मण जाति को इतना महत्व क्यों दिया गया है ना? सो उसका तो बहुत ही सरल कारण है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में सिर है, हाँ, हाथ है, पेट है और पैर है। तो जो सिर है उसकी जो है ब्राह्मणों की तुलना सिर से की गई है, मस्तिष्क से की गई है, दिमाग से की गई है ना। हाथों की तुलना क्षत्रियों से की गई है, पेट की तुलना वैश्य से की गई है और जांघों की टांगों की तुलना क्षुद्र से की गई है। सो आप देखोगे कि हाथ पैर कटने से या पेट पर जख्म इत्यादि आने से व्यक्ति फिर भी बच सकता है, लेकिन अगर सिर कट जाएगा तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर सोचने समझने, अगर सिर नहीं भी कटा, सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो भी लोग उसको मरा हुआ ही मानते हैं, नहीं? सो क्योंकि जो ब्राह्मण है वो समाज को दिशा देने की शक्ति है उनमें। जो बाकी के तीन वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, उनको जीवन अच्छे से कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भगवान से संबंध कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ब्राह्मणों के पास होता है, इसलिए ब्राह्मणों का जो है बहुत अधिक महत्व माना गया है। और ब्राह्मणों का ये फर्ज है कि वो खुद भी आचरण करें, ऐसा नहीं कि दूसरे को बोला कि भाई तू इंद्रित भोग मत कर और खुद वो गोलगप्पे खा रहा है ना। सो अगर दूसरों को कह रहे हैं कि आप इंद्रिय संयम रखो तो ब्राह्मण को खुद भी इंद्रिय संयम रखना चाहिए, नहीं तभी उसकी बात की वैल्यू होगा, नहीं तो बात की क्या वैल्यू है उसकी। सो ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अपने आचरण से करके दिखाता है, और क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान होता है इसलिए वो जो समाज के बाकी तीन वर्ग हैं उनका मार्गदर्शन कर सकता है, और क्योंकि वो गुरु की भूमिका निभा रहा है इसीलिए ब्राह्मण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है तो हमें साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि जो ब्राह्मण है वो जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा। ठीक है, गुणों और कर्मों के आधार पर, गुण कर्म विभाग शाह। ठीक है, और किसी का प्रश्न? सो अजीब सा प्रश्न है इनका कि भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला कि युधिष्ठिर को क्यों नहीं बोला कि तुम सबको मार लो और निमित्त बन के यश प्राप्त कर लो। वो इसलिए बोला क्योंकि अर्जुन से भगवान एक मित्र की भांति व्यवहार करते थे। आप देखो कि मित्र को आप कुछ भी कभी भी कह सकते हो, युधिष्ठिर जो हैं क्योंकि उनके बड़े भाई के समान थे और भगवान कृष्ण उनके चरण छूते थे युधिष्ठिर महाराज के, तो उनसे इतनी फ्रैंकली इतने स्पष्ट बात नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात यह है कि उस समय सिर्फ युद्ध के बीच में बाकी सब लोग तो दूर दूर खड़े थे, तो सिर्फ भगवान कृष्ण और अर्जुन ही वहाँ पर खड़े थे, है ना। और भगवान कृष्ण का प्लान था कि अर्जुन के माध्यम से जो है सारी सेनाओं का संहार किया जाए। ठीक है, लेकिन वो किसी को भी कह सकते हैं भगवान, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए चाहे वो कितने ही कठिन क्यों ना हो, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो और किस